सन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पीले अमृत का प्याला।
आप सभी तो रोज यहाँ बैठते हो, रोज क्लास चलती है, योग भी करते क्लास भी करते, व्यर्थ से मुक्त हो गए नहीं? तो इस हाल की विशेषता जो बाबा ने सुनाई कि यहाँ आते ही व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो सकती है, क्या अनुभव है माताओं का, भाइयों का क्या अनुभव है? क्यों ऐसा कहा बाबा ने? कुछ तो अर्थ होगा ना इसके अंदर। सबको मालूम होगा जब पहले ये हाल बना तो बाबा यहाँ पर मुरली सुनाते थे और मम्मा साथ में होते थे, एक गद्दी पर बाबा एक गद्दी पर मम्मा। तो व्यर्थ से मुक्त करने वाली बाबा की मुरली है जो इस हाल में चली। यहाँ पर जो बच्चे आए बाबा से, ज्ञान रत्नों की ऐसी झोली उनकी भर गई जो व्यर्थ से मुक्त हो जाए। तो बाबा ने कहा कि अगर उस इतिहास को हम याद करें, मुझे भी यहाँ बैठ करके पहले का इतिहास याद आ गया। जब मैं शुरू शुरू में आया तो दादी जी यहाँ पर बैठ करके मुरली सुनाती थी गद्दी पर, अभी तो सोफे कुर्सी लग गए। इस हाल में एक भी सोफा नहीं था, दादी सामने बैठती थी और दीदी यहाँ पर बैठती थी। दादी मुरली सुनाती थी और दीदी उसमें से प्रश्न उत्तर निकालते थे, और जब वो प्रश्न उत्तर मुरली पूरी हो जाती थी तो दीदी कहती थी अभी बैडमिंटन खेलेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आप सभी उत्तर दो। सभी मधुबन के भाई बहने इसी हाल में मुरली सुनते थे एक साथ। तो दीदी के जो प्रश्न निकालने का तरीका था ऐसा था जो कोई उसको उत्तर दे ही न सके। मुरली वही सुनी सबने, लेकिन इतना घुमा फिरा करके प्रश्न लिखती थी जो सभी सोच में पड़ जाते थे कि मुरली में बाबा ने क्या कहा है। तो ज्ञान रत्नों से खेलने का, ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करने का, दीदी दादी के साथ बहुत नजदीक का इस हाल के अंदर अनुभव कुछ आत्माओं ने किया है। सीखने को भी बहुत कुछ मिला क्योंकि नाइट क्लास शुरू से कंपलसरी रहा है। कुछ भी हो जाए दीदी कहती थी चलो बेल बज गई, पहले नंबर में आके बैठ जाती थी यहाँ पर, और सबको दीदी के पीछे तो आना ही पड़ेगा। जब खुद आ गई तो बैठती थी और हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी, दीदी की एक विशेषता थी ट्रेनिंग देने की कि कोई भी बात दे करके कहती थी तुम क्लास में बैठो और सुनाओ सबको, खुद सुनती थी कैसे सुनाते हैं, क्या निकाला है, क्या समाचार आते हैं। तो पूरा देश विदेश का जितना समाचार सेवाओं का होता था वो रात्रि क्लास में सुनती थी। विशेष करके मुझे भी भाग्य शुरू से मिला जो सब समाचार सुना करके, या बाबा जो मुरली चलाते थे पर्सनल एक एक से मिलते थे तो पूरी पूरी रात मैं बैठ के लिखता था, क्योंकि उस समय कोई टाइप या ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, टेप रिकॉर्ड भी रात भर नहीं चलता था। तो हम बैठ करके एक एक का जितना बाबा बोलता था, किसी को भी कुछ बोल रहा हो, सब लिखते थे। और जब बाबा का पार्ट पूरा होता था तो दीदी कहती थी जो तुमने रात भर लिखा है वो यहाँ सुनाओ सबको। सेंटर्स पर भेजने वाली बातें सेंटर्स पर भेजी जाती, लेकिन जो पर्सनल किसी का अनुभव होता, किसी के लिए बाबा कोई वरदान देते, कोई बात करते, तो फिर हम सभी यहाँ पर बैठ करके सुनते थे। तो तो समर्थ बनाने वाला ये हाल रहा है शुरू से लेकर के। इस हाल में ऐसी ज्ञान चर्चा शुरू से हुई है जो आत्मा व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाए, इसलिए बाबा ने इसको तीर्थ स्थान का नाम दिया। इस तीर्थ पर जाओ और व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। तो महत्व तो चारों स्थानों का, चारों धामों का बताया। रोज सभी चारों धामों में जाती है माताएं, जाती हो चारों धामों में? यहाँ रह करके तो अलबेलापन नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ रहते हैं तो रहते रहते साधारणता आ जाती है। रहने वाले कहते हैं ना, गंगा के तट पर रहने वालों को गंगा का मान नहीं होता, उसमें कीचड़ डालते हैं। दूर दूर से यात्री आते हैं और यात्री आकर के नहा करके अपने पाप धो के चले जाते हैं, और जो तट पर रहते हैं रोज स्नान करने वाले हैं उसके महत्व को नहीं जानते, उसकी वैल्यू नहीं आती। तो रहते हुए भी कई आत्माएं बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, शांति स्तंभ पर कहाँ जाते? तो अगर हम सबको भाग्य मिला है रहने का, सबसे बड़ा भाग्य है, हम सभी चारों धामों की रोज यात्रा करें। बुद्धि से भी कर सकते हैं, लेकिन जब स्थूल में रहने का भाग्य मिला है तो 5 मिनट भी, 2 मिनट भी जा करके बाबा से रूहानियान किया, बाबा शिष्य के समान बनने की प्रतिज्ञा की, बाबा के शांति स्तंभ पर आकर के शक्ति सकाश ली, और इस हिस्ट्री हाल में आए तो बाबा के महावाक्य सुने। बाबा कहता था ना, चित्रों के सामने बैठ करके मनन करो, चिंतन करो, समझाना आ जाएगा। शुरू शुरू में यही चित्र बड़े बड़े बने, जो बाबा कहता था बच्चे करते थे। परसों भी बाबा ने क्या कहा कि और कोई पुरुषार्थ करो या न कहो करो, लेकिन जो बाबा चाहता है वो करो बस। तो बाबा क्या क्या चाहता है कभी लिस्ट निकाली है? अगर ये लिस्ट निकाल ली जाए ना कि बाबा क्या क्या चाहता है मेरे से और क्या नहीं चाहता है, तो जब चाहना आ जाएगी तो जो नहीं चाहता अपने आप पता चल जाएगा। तो बाबा जो चाहता है वो अपनी मुरली में, अपने महावाक्यों में सुनाता है कि बच्चे ये करो ये नहीं करो, ऐसे ऐसे करो बस। तो बाबा की चाहनाएं अगर हम पूरी करते चले, चाहनाएं ऐसी हैं कि हम सब की उसमें उन्नति अपने आप होती है, और कोई पुरुषार्थ करें या न करें, लेकिन बाबा चाहता है कि बच्चे ऐसा चलें, ऐसे करें। तो दिनचर्या जो बाबा ने बना के दी है, बाबा कहता मेरे बच्चे इस दिनचर्या में पहले नंबर में एक्यूरेट रहें। सुबह से रात तक जो दिनचर्या बनाई है, मधुबन जैसी दिनचर्या कहीं पर भी नहीं है, किसी भी स्थान पर नहीं है। अभी तो हर घंटे का गीत भी बजता है, वो भी दिनचर्या के अंदर एक अपना नया स्थान रख रहा है। सभी आकर के यहाँ पर 1 मिनट हर घंटे में साइलेंस का अनुभव करते हैं। बाकी दिनचर्या जो सुबह से शाम तक की, रात तक की बनी हुई है, हम सब की उन्नति का बहुत अच्छा साधन है। बाबा क्या चाहता है लिस्ट निकाली है किसी ने? रिवाइज कोर्स की मुरली में यथार्थ रहम दिल की परिभाषा बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई कि यथार्थ रहम दिल आत्माएं कौन है, कैसी होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी, अपने पर रहम करेंगी, और उसमें भी जो मुख्य कमी और कमजोरी के कारण है, अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा या प्रभावित होना, उससे मुक्त रहेंगे। जो रहम दिल आत्माएं हैं बेहद के वैराग्य के आधार से इन सब बातों से सहज मुक्त हो जाएंगी। और बाबा की चाहनाएं जो हैं वर्तमान समय के अनुसार बाबा की वर्तमान मुरलियों में आ रही हैं, क्योंकि तीनों मुरलियां अभी तक हमने जो सुनी उसमें एक विशेष अंडरलाइन है समय की, खजानों की संपन्नता और समय, इन दो बातों पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है। हर एक मेरा बच्चा सब खजानों से संपन्न हो, 3 खजानों में बांट दिए इस बारी बाबा ने, लेकिन उन 3 खजानों के साथ साथ बाबा भी चाहते हैं कि सब बच्चे मेरे ऐसे भरपूर हो जाएं जो एक एक के द्वारा सबको कुछ न कुछ प्राप्ति हो। खुद भिखारी की तरह मांगते नहीं रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, कोई ऐसी कमी ऐसी कमजोरी ऐसे संस्कार खुद के पास न हो जो खुद का समय युद्ध में चला जाए, मेहनत में चला जाए। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को बहुत संपन्न रूप में देखना चाहते हैं समय के अनुसार, कि एक एक खजाना एक एक बच्चे के पास भरपूर हो। तो खजानों की लिस्ट तो बाबा ने दी है, लेकिन वो खजाने उसमें कभी ये ना आ जाए कि ये मेरा है, मेरापन ना आ जाए, मैंपन ना आ जाए। उसके लिए बाबा की एक चाहना है, कौन सी? अभी योग जो है वो साधारण नहीं चाहिए, ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद, ज्वाला स्वरूप माना शक्तिशाली याद, जो याद ऐसी हो जिसमें कोई भी व्यर्थ साधारण संकल्प उत्पन्न न हो, एक टिक एक रस बाबा की याद बनी रहे, जिससे विकर्म भी दग्ध हो और अन्य आत्माओं की सेवा भी हो, संस्कार भी बदले और दूसरे संसार की भी प्रकृति के तत्वों की भी सेवा हो, क्योंकि वो वाइब्रेशन अपने आप फैलते हैं। तो बाबा अभी हम सब का ध्यान खिंचवा रहे हैं ज्वालामुखी तपस्या की तरफ, और उसके लिए विशेष कोई ऐसा नहीं है कि हम सेवाएं छोड़ करके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हमारा बैलेंस चल रहा है सेवाओं में, सेवा करो, सेवाएं करने के लिए तो बाबा के घर में बहुत बड़ा भाग्य मिलता है, गोल्डन चांस है ये भी अपने खाते को संपन्न बनाने का, मन से वचन से कर्म से, जो स्टॉक दुआओं का मिलता है उससे, पुण्य का खाता भी दुआओं का खाता भी, ये दोनों खाते तो हम सेवा के द्वारा भरपूर कर सकते हैं। तीसरा जो पुरुषार्थ से प्रारब्ध है, पुरुषार्थ हर एक नंबर वार कर रहा है, सभी कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो करते ही हैं, लेकिन मैं पुरुषार्थी हूँ, कोई कमी आ जाए फिर उसमें उसको समाप्त करने के लिए संकल्प चलता रहे, क्या करूँ, पुरुषार्थी हूँ। बाबा कहता भी इस शब्द को यूज नहीं करो, दृढ़ता से संकल्प करो तो समाप्ति हो जाए। अगर हमारे संस्कारों की समाप्ति, पुराने संस्कारों की समाप्ति हो जाए तो समाप्ति का समय समीप आ जाए। तो बाबा भी हम सब से चाहना रखते हैं एक एक बच्चे से, कि मेरा एक एक बच्चा इतनी अपनी ऊंची स्थिति बना ले। कैसे बनेगी स्थिति? श्रेष्ठ स्थिति का आधार क्या है? जितनी अच्छी स्मृति में हम रहेंगे, बीती बातों की स्मृति हमारी स्थिति को अच्छा बनने नहीं देगी। कोई भी बात हो गई, उस संकल्पों में अगर हम ज्यादा समय देंगे तो हम स्थिति अपनी बना नहीं पाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं रूहानी सेना का मेडल श्रेष्ठ स्थिति है। अगर हम सभी रूहानी सेना के सेनानी हैं, तो हम सब की स्थिति अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरा करे या ना करे, दूसरा क्या कर रहा है उसको नहीं देखना, दूसरों को देखने की आंख जो बाबा ने कहा बहुत तेज है उसको थोड़ा सा डल कर दो, देखो ही नहीं, जो कर रहे हैं करने दो। अगर हम अपनी स्थिति अच्छे से अच्छी बनाना चाहते, संकल्प में है कि बाबा जैसी मेरी स्थिति चाहता है, कैसे चाहता है माता है, कैसे चाहता है बाप समान, बाप समान में बहुत सी बातें आती हैं, अचल अडोल एक रस एक वृता अभिविचारी याद, कोई दूसरे की याद न हो, जो कल कहा बाबा ने किसी के तरफ भी अपनी विशेषताओं पर भी प्रभावित न हो जाओ, कि मेरे बुद्धि की विशेषता है, मेरी इन्वेंशन है, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा है, मेरे ज्ञान सुनाने का तरीका बड़ा अच्छा है, कई आत्माएं अपनी विशेषताओं से प्रभावित हो जाती, दूसरों पर प्रभावित होकर के उनके झुकाव में आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे किसी भी आत्मा पर, ना अपने पर न किसी आत्मा पर प्रभावित नहीं होना, प्रभावित होंगे तो झुकाव हो जाएगा और बाबा भूल जाएगा। ये देन जो है बाबा की है, बाबा ने उनको विशेषताएं दी हैं, इसलिए उन विशेषताओं से लाभ लो लेकिन उनमें अटक न जाओ। तो एक तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति का आधार है फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। ये तीन बिंदियों का तिलक दिया ना चाबी के रूप में, बाबा ने कहा ये चाबी देता हूं, जब चाहिए लगा लो। तीन स्मृतियों की, मैं, बाबा और ड्रामा, अगर ये स्मृति रहती है, ये तिलक लगा हुआ है, तो स्थिति अच्छे से अच्छी रह सकती है। क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, हर दृश्य उसमें कल्याणकारी है, हर आत्मा का उसमें पार्ट अपना अपना है, विशेष है, अपने आप विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं अगर हमने यथार्थ रीति से ड्रामा को यूज किया है। तो ड्रामा की बिंदी को यथार्थ रीति से यूज करना, फुल स्टॉप लगाना, इससे हमारी स्थिति अपने आप अच्छे से अच्छी बन जाएगी। और क्या हम करें जिससे स्थिति पूरी निर्विघ्न और एक रस रहे, क्योंकि हमारी स्थिति को बिगाड़ने वाली बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, जो आज बाबा ने कहा कि जितना तुम रुस्तम बनते हो, माया भी रुस्तम बन करके, पहलवान बन करके आती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, बाबा को भी नहीं कह सकता बाबा माया को रोको, बाबा कहता और जाओ इसके पास। तो पहलवान के साथ पहलवान बन करके आती है, लेकिन जो विजयी हैं, जो कर्मातीत स्थिति के पुरुषार्थी हैं, जो आज बाबा ने निशानियां बताई ना कर्मातीत स्थिति की, युद्ध समाप्त हो जाएगी, युद्ध में समय नहीं जाएगा, शक्ति नहीं जाएगी, आएगी चली जाएगी, कोई बातें आएंगी उनमें ज्यादा समय नष्ट न हो, संकल्प न चल जाए, फास्ट गति के संकल्प, व्यर्थ संकल्पों की गति हमेशा फास्ट होती है, अपने आप आया और समाप्त हो गया। लेकिन श्रेष्ठ चिंतन की ऐसी सुंदर विधि आनी चाहिए, ज्ञान इमर्ज रहे, मर्ज न हो जाए उस समय, उस समय मर्ज हो जाता जब कोई बात आती है। लेकिन अगर हम श्रीमत की मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, तो दूसरा एक साधन ये है कि जो बाबा श्रीमत दे रहा है मुरली के द्वारा, उस श्रीमत की लकीर के अंदर रहे। सवेरे से रात तक के लिए बाबा ने मर्यादा की, श्रीमत की लकीरें खींच करके दी है, क्या करो क्या नहीं करो, पता है ना सबको। अमृत वेले से रात तक के लिए बाबा ने एक एक बात के लिए, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, सबसे व्यवहार में आना, किस बात की श्रीमत नहीं दिया। कोई कहे किस बात के लिए मुझे पता नहीं है, ऐसा है कोई? कोई बाबा का बच्चा ऐसा नहीं है जो मुरली सुनता है उसको ये न मालूम हो कि इस परिस्थिति में, इस संबंध संपर्क में, इस व्यवहारिक जीवन में मुझे कैसे चलना चाहिए। हर एक को पता है, क्योंकि बाबा ने बहुत स्पष्ट सब बातें सुना दी है। आज भी एक छोटी सी बात श्रीमत की सुनाई, कई बच्चों को नौकरी के लिए जाना पड़ता है तो चाय के लिए पूछते हैं, चाय पीऊं या ना, छोटी सी बात सुना दी, श्रीमत दे दी ना, तुम अच्छे हो, अपने बिजनेस वाले हो, कोई प्रकार की आप पर दबाव नहीं है किसी का, आपको क्या जरूरत है पीने की बाहर, क्या जरूरत है किसी के हाथ के बनाया हुआ खाने की। लेकिन कोई अंडर है, कोई मिनिस्टर के अंडर काम कर रहा है, कोई बड़े आदमी के अंडर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अगर वो नहीं खाएगा तो उसको डिसमिस कर देंगे, कहेंगे क्या ऐसी क्या है। तो बाबा उसको कहता है ऐसे हट्टी नहीं बनो, योग करके, दृष्टि दे करके, या तो बहाना कर दो भाई इस समय मैं नहीं खाता हूं, अगर चल जाती बात तो ठीक है, नहीं चलती तो पी लो। तो बाबा कैसे श्रीमत देता है एक एक बच्चे को, इसलिए कभी ये प्रश्न उठे, प्रवृत्ति में है, रंगीन ड्रेस पहननी पड़ती है, शादी में जाना पड़ता है, बाहर कई बार खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना, बहुत सारे प्रश्न प्रवृत्ति वालों के रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं तो पूछते रहते हैं, लेकिन सब बातों का उत्तर बाबा की मुरली में है। सिर्फ मुरली ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से, एक बाबा कई बार कहते हैं ग्रंथ का वचन है, अगर समझ में नहीं आ रही, मान लो क्लास में भी आपको इंटरेस्ट मजा नहीं आ रहा है, लगता है सुस्ती है या कोई कारण से आप भारी हो रहे हैं, तो मुरली तो हर जगह पर मिल जाती, जैसे यहाँ पर भी रखी रहती सारा टाइम, लाइब्रेरी में रहती, यहाँ रहती है, कई के पास भी होती है, लेकर के भी उसको पढ़ो। अच्छा अधिक नहीं है तो बाबा की कम से कम बोर्ड के ऊपर वरदान है, स्लोगन है, सार है, प्रश्न उत्तर सब लिखा हुआ होता है। केवल इंटरेस्ट की बात है, केवल इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट किसी का हो तो बाबा की मुरली से अपने आप को सहज रीति से समर्थ बना सकता है और अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा रख सकता है। तो अच्छा खजाना जिसके पास है, अच्छा चिंतन जिसका चलता है, पॉजिटिव चिंतन, नेगेटिव नहीं, क्यों नेगेटिव दृश्य तो सबके सामने आते हैं, कई बातें आती हैं, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, सुनाने वाले भी बहुत हैं। अगर मैं आत्मा श्रीमत की लकीर के अंदर हूं तो ध्यान रखना है कि पर चिंतन पर मत और मन मत से मैं मुक्त हूं। श्रीमत क्या कहती है, अगर मन मत का प्रभाव पड़ गया, मन मत बहुत अपना काम करती है, जो अलबेलेपन की भाषा सुनाता है ना बाबा, वो मन मत की भाषा होती है, हो जाएगा कर लेंगे, कौन बना है बाबा, तो ऐसा आठ ही पास होंगे, अगर लिस्ट निकालो ना मनमत वालों की, अलबेलेपन की भाषा, बाबा की मुरलियों की पॉइंट्स ऐसे ढंग से यूज करके बताते हैं जो पुरुषार्थहीन बना दे। इसलिए अलबेलापन तो हम ब्राह्मणों के लिए है ही बहुत बड़ा दुश्मन, वही आलस्य को भी जन्म देता है, सुस्ती को भी जन्म देता है। लेकिन अगर श्रीमत की एक एक पॉइंट पर हमारा ध्यान है, कदर है, कदर चाहिए, तो हम बहुत सहज रीति से उसका पालन करते हुए अपनी स्थिति अच्छी बना सकते हैं। इसलिए बाबा कई बार एक साकार मुरली में टोटका देता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, सुना है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरा घोट घोट के पिलाएगा ना, वो भांग पीने वाले होते हैं ना, दूसरे पिला देते हैं तो उनको नशा चढ़ जाता है। बाबा यहाँ कहता है बच्चे कोई पिलाएगा, कोई कहेगा इस नशे में रहो, इस समान में रहो, कब तक रहोगे आप, क्लास किया थोड़ा नशा चढ़ा, गए थोड़े देर रहा और फिर बातें हुई आपस में, कोई पर चिंतन हो गया, कोई पर दर्शन हो गया और नशा गुम हो गया, सोडा वाटर हो गया। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने चिंतन को अपनी घोटना माना, ऐसा अच्छा चिंतन करें, सुबह सुबह अपने आप को इतने अच्छे चिंतन से भरपूर कर ले, जो टाइटल से बाबा दे रहा है, जो इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान देता है, जो हम सबकी विशेषताएं वर्णन करता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सिर्फ कोई मन खुश करने के लिए बाबा नहीं बता रहा है, रियली बच्चों की महिमा जब करता है तो बाबा के जैसे शब्दों से लगता है कि सचमुच बाबा कहता मेरा लास्ट मन का भी, जिसने मेरा बाबा कहा है वो दुनिया वालों से भाग्यशाली है। कितनी भी अरबपति आत्मा हो, करोड़पति हो, धनवान हो, साहूकार हो, बड़ी पोस्ट पोजीशन वाली हो, लेकिन मेरा बच्चा अगर जो जिसने बाबा कहा मेरा बाबा भगवान को, वो उनसे भाग्यवान है, उसके लिए सब कुछ बाबा के पास है, हाजिर है, बाबा उसके लिए हाजिर हो जाता है। तो अगर हम सभी अपने ऊंचे समान का चिंतन करते हैं, उस स्वयं को स्वयं मान देते हैं और स्वरूप में स्थित होकर के रहते हैं, अभिमान नहीं आता, ऐसा नहीं उसका कोई उल्टा नशा चढ़ जाएगा, ये तो बहुत नशे में रहता है, इसके अंदर तो बहुत मगरूरी है, देहाभिमान वाला नशा जो है, देहाभिमान वाला जो मैंपन है, उससे मगरूरी दिखाई देती है, उसके बोल में रोब दिखाई देता है, अहंकार दिखाई देता है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बड़ा नशा है इसको। लेकिन जिसके अंदर समान है उसके अंदर रूहानियत है, उसके एक एक बोल के अंदर वो बहुत स्नेह है, रुहाब है, वो किसी का अपमान नहीं करता, ना अपमान की फीलिंग उसको आती, भले कोई कर भी जाए, अगर समान में रहने वाला है, अपने ऊंचे शान में रहता है, गलत नहीं है, तो क्यों किसी के कहने से उसको अपमान की फीलिंग आएगी, किया उसका पार्ट है, उसका भाग्य, वो जाने। लेकिन अगर मैं आत्मा अपने समान में रहती हूं तो सबसे बड़ी निशानी उसकी यही है, कोई भी प्रकार से अपमान की फीलिंग नहीं आएगी और दूसरे का अपमान करेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है अगर अपनी स्थिति अच्छी रखनी है तो सबको सम्मान दो, समान में रहो और सबको सम्मान दो, मांगो नहीं ये मुझे दे, क्योंकि मान चाहिए सबको, कोई को भी अगर मान नहीं मिलता है तो कहते हैं यहाँ तो हमारी इंसल्ट हो गई, यहाँ तो कोई ने मुझे पूछा ही नहीं। कई प्रकार की माया ऐसे सूक्ष्म रीति से अगर कोई बात न करे तो भी कहेंगे यहाँ तो इस गए इनके पास, देखो प्यार से बात भी नहीं किया, देखा भी नहीं मेरी तरफ। कई ऐसे ऐसे अनुभव करते हैं, बाद में सुनाते हैं कि भाई जी उस दिन मैं आपके सामने आई, आपके सामने आया, आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुझे तो बड़ा खराब लगा, ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं। पहले नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, कोई बात हो गई, कोई बिजी है, कोई काम कर रहा है, आप इतना क्यों फील कर लिया कि मेरे से कोई कारण से नहीं बात किया, आए हैं बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई कारण हो सकता है। लेकिन कई आत्माएं इतनी नाजुक कोमल दिल होती हैं, किसी के सामने जाते ही उनको ऐसा लगता है पता नहीं मेरा रिगार्ड नहीं रखा, मेरे से ठीक बात नहीं किया। होता है अगर हमारे अच्छे वाइब्रेशन है तो उनको फीलिंग नहीं आएगी, अच्छी स्थिति हम बना करके रखते हैं तो आत्मा आते ही महसूस करेगी, लेकिन कई आत्माएं इतनी नाजुक होती हैं उस वाइब्रेशन को भी कैच नहीं कर पाती, उनको लगता है यहाँ पर हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, जाना ही नहीं चाहिए इनके पास, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए बहुत एक अपने दिल को बहुत अच्छा एक अच्छा शुभ संकल्प लेकर के अपने आप को इतना हम मान दे दें जो हमें मान की इच्छा न हो, और सबको इतना सत्कार दें, इतना सम्मान दें जो अपने आप को देना शुरू कर दे, कहाँ जाएगा, देगा ही, क्योंकि हमारा इतना है उसके प्रति। तो श्रेष्ठ स्थिति का आधार है सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना। जैसे खातों को बढ़ाने का आधार बताया निमित्त निर्माण और निस्वार्थ सेवा, खातों को बढ़ाने का इस बारी बाबा ने ये आधार बताया। वैसे तो कहता है जो तुम्हारे पास है वो दूसरों को दो, दूसरे खजाने देने से कम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है, जो है वो दान करो, जैसे बोला बुद्धि का खजाना दान करो, बुद्धिमान बन जाओगे, समय बच जाएगा, दूसरों का भी बच जाएगा, अपना भी बच जाएगा। तो खजानों को दान करो, दो दूसरों को बढ़ जाएंगे। इस बार कहा कि निमित्त भाव से अगर देंगे तो बढ़ेगा, एडिशन कर दी, क्योंकि निमित्त भाव माना जिसके अंदर मैंपन ना आए, अगर मैंपन आ गया निर्माणता खत्म हो गई, निर्माणता खत्म हो गई तो स्वार्थ आ गया उसके अंदर। तो बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की एक बहुत ऊंची लेवल तक लिए जा रहा है, समान बनाना है, और बनना इसी ग्रुप में ही, और कोई दूसरे बनने वाले तो नहीं आएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को समान बनाने के लिए कैसी गहरी गहरी बातें शिक्षाएं देता है, अगर हम उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको स्वरूप में ले आते हैं कि बाबा मेरे से क्या चाहता है, बाबा की क्या आशाएं हैं, तो हम फिर सहज रीति से जो बाबा चाहता है उसको करते चले। दूसरा कराएगा तो लगेगा पता नहीं ये कहता है, ये बताता है, ये खुद करता है या नहीं करता, उसकी तरफ नजर जाएगी। लेकिन जो करने वाली आत्माएं हैं, जिनके अंदर लक्ष्य है कि मुझे तो बाबा जो कहता है मुझे करना, कोई करे या न करे, वो अंदर ही अंदर गुप्त रीति से पुरुषार्थ करते, और उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध बहुत श्रेष्ठ है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है, कई कहते हैं इसका भाग्य बड़ा ऊंचा है, भाग्य तो है लेकिन भाग्य बना कैसे, ऐसे तो नहीं ऊपर से भाग्य कोई आ गया, जरूर उसने कोई न कोई जन्म में, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं जो उसका भाग्य आज उसका अच्छे से अच्छा दिखाई दे रहा है। इस जन्म में भले कोई पुरुषार्थ न किया हो, कोई ऐसे कर्म न भी किए हो, लेकिन अगर भाग्य अच्छा है तो फल तो ऐसे नहीं होगा, जरूर बीज होगा उसका, कुछ तो किया होगा तब तो इतना ऊंचा भाग्य बना। तो हम सभी अपना श्रेष्ठ भाग्य तीनों खातों की संपन्नता को देखते चले, संतुष्टता भी होगी उससे, सबके प्रति दातापन की भावना होगी, सुभावना भी होगी, कल्याण की भावना भी होगी। मैं आत्मा संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, तो नेचुरल है हम दूसरों को देंगे, जो आएगा संबंध में संपर्क में उनको हमसे प्राप्ति होगी। तो ऐसे बाबा की मुरली जो चलती है उस पर गहराई से मनन चिंतन करते क्या करेंगे, पुरुषार्थ की रेस करो, क्योंकि 15 दिन के बाद नया होमवर्क मिल रहा है, नया होमवर्क मिल जाता है, तो नया नया होमवर्क लेकर के हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं कि हमको डायरेक्ट बाबा की मुरली सुनने को मिल जाती है, सुन करके हम रेस करें तो बहुत आगे नंबर ले सकते हैं, बाप समान हम बन सकते हैं, दूसरा बने या न बने हम बन जाएं। तो हम सभी सेवाधारी क्या करें, सेवा करते हुए अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाओ। छोटी छोटी बातें हो गई, बिंदी लगा दो, उसका चिंतन नहीं, वर्णन नहीं, क्योंकि कोई भी बात छोटे से बड़ी कैसे बनती है, चिंतन करने से। अभी मैं 5 मिनट में एक समाचार सुना देता हूँ, समाचार बहुत अच्छा है, इसलिए कई पूछते रहते हैं। अभी दादी गुलजार और मोहिनी बहन यूपी टूर पर गई थी, जिस समय से मोहिनी बहन को जो उनकी सेवा मिली है गंगे दादी के शरीर छोड़ने के बाद, 2 साल के लगभग हो गया, पहली बार मोहिनी बहन यूपी में गई 2 साल में तबीयत वगैरह के कारण, और दादी गुलजार को भी विशेष निमंत्रण दिया था, आगरा के पास एटा डिस्ट्रिक्ट है, और एटा डिस्ट्रिक्ट में कासगंज एक छोटा कस्बा ही है, तहसील है, वहां पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था, मिनी मेगा प्रोग्राम था, और 5 कन्याओं का समर्पण समारोह था। तो दादी को खास निमंत्रण दिया था, सरोज बहन रहती हैं, मेरी लौकिक में बड़ी बहन है, उन्होंने बहुत दिनों से एप्लीकेशन डाली थी कि दादी हमारे पास एक बार आए, तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके 23 नवंबर को इस बार दादी को तैयार किया था। हम कुछ मधुबन के भाई भी गए थे साथ में, तो दादी जी, मोहिनी बहन, हम मधुबन के 10-12 भाई, वहां पर सेवा का ऐसा सुंदर प्रोग्राम रहा, जो बहुत कठोर धरनी बोलते हैं, लेकिन वो कठोर धरनी इतनी नरम दिखाई दी, जो लग रहा था कि इस धरनी पर हर आत्मा सहयोगी है। जितने उस शहर के अंदर लोग थे, जितने बड़े नामी ग्रामी थे, करीब 125 लोगों ने दादी का सम्मान किया, और विधि ये बनाई थी कि 4 दिन पहले से ही उषा बहन ने राजयोग शिविर कराया, और गीता आजकल वो अपने ढंग से बाबा के ज्ञान को, गीता ज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से तैयार किया है। तो सवेरे राजयोग शिविर और शाम को गीता का रहस्य, उस पर प्रवचन होता था, तो करीब 2,500 लोग वो प्रवचन सुनने आते थे सभा में। लेकिन उसकी सिर्फ 2,500 की भी बात नहीं थी, वो माइक वाला जो था वो बड़ा इंटरेस्टेड था, और उसने क्या किया था, पूरे शहर में स्पीकर लगाए थे, हर पोल पर स्पीकर था, तो जब वो प्रवचन चलता था तो एक तो गीता के नाम से था, तो गीता सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्या गीता का ज्ञान सुनाते हैं, और सवेरे सवेरे 6:30 बजे राजयोग शिविर शुरू होता था, तो सब अपनी अपनी दुकानों पर लोग चुपचाप बैठ करके स्पीकर के आगे पूरा क्लास सुनते थे। तो पूरा शहर, जैसे पूरा शहर तो झंडियों से खूब सजाया था पूरे शहर को, और पता था कि इनका कोई बहुत बड़ा आने वाला है, पूरे शहर में आवाज थी, तो सभी को इंटरेस्ट भी था, और जब स्पीकर पर उषा बहन का लेक्चर होता था तो सभी सुनते थे। तो मैंने दृश्य देखा कि जब हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, लक्ष्य था 3,000 ब्राह्मण होंगे, लेकिन 5,000 ब्राह्मण शोभा यात्रा में चारों तरफ से इकट्ठे हो गए दादी जी से मिलने के, दादी के नाम से भी आ जाते हैं लोग। तो 5,000 की सभा थी, क्लास था, सवेरे गुरुवार का दिन था, भोग भी लगा, मोहिनी बहन ने भोग लगाया, क्लास हुआ, और उसके बाद शोभा यात्रा निकली, और उसी समय खाना पैक करके उनको दिया गया था कि अपना अपना खाना जहाँ चाहिए वो खाओ, सभी को पैकेट मिल गए थे, तो शोभा यात्रा करके सब पैकेट खा करके अपना सभा में बैठ गए। 1 बजे से ही कवि सम्मेलन शुरू हो गया, और 1 बजे से 6 बजे तक प्रोग्राम चला, करीब पूरे शहर के नामी ग्रामी लोग तो थे ही, इन आजू बाजू के भी इकट्ठे हो गए थे, तो 12-15 हजार की सभा भी थी, बहुत अच्छा, पूरा रेलवे ग्राउंड सुंदर सजा हुआ था, बड़े बड़े चित्र पीछे लगे हुए थे, खुली स्टेज थी, ऊपर कनात नहीं थी क्योंकि ठंडी शुरू हो गई है तो लोग धूप में बैठना ही पसंद करते हैं, और 4 बजे के बाद तो छाया आ जाती है। तो बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भरतपुर के बच्चों ने किया, और कवि सम्मेलन था जो हाथरस के कई कवि उसमें आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम सब चला। और दादी जी का प्रवचन, मोहिनी बहन का प्रवचन, और एक मीना साहब हैं, विशेष अधिकारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने अनुभव सुनाया, वो बाबा के बच्चे हैं। और दादी को स्टेट गेस्ट बनाया था, तो स्टेट गेस्ट होने के कारण पुलिस की 3 गाड़ियां दादी के साथ साथ होती थी, आगे हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चलती है, आगे हॉर्न बजाती है गाड़ी तो अपने आप सब खड़े हो जाते हैं, तो 6-7 गाड़ियों का काफिला चलता था दादी के साथ। तो एक बहुत अच्छा पूरे शहर में माहौल था और बहुत अच्छी सेवाएं हुई, खूब अखबारों में भी निकला, और सबके अंदर एक बहुत सहयोग की भावना जागृत हो गई। जितने होटल लिए थे सब फ्री कर दिए, ग्राउंड फ्री कर दिया, सफाई भी उसकी फ्री करा दी, सब लोग शहर वाले जैसे लग गए कि हमारा प्रोग्राम है, नहीं तो वहां पर कोई सहयोग देगा पता ही नहीं था देगा कि नहीं देगा। तो बाबा अभी समय के अनुसार कहता है कि आप बच्चे कदम रखो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ हिम्मत आपकी तो मदद बाबा की। तो अभी समय आ गया है, कोई भी स्थान पर अगर सेवा की सफलता करनी है तो उसके लिए बच्चों को केवल निमित्त बनना है। तो हमने देखा कि एक बहन ने निमित्त संकल्प किया, सबका सहयोग मिला, और मधुबन का भी सहयोग अच्छा था, दादियों का भी सहयोग था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी सेवाएं हो गई। ओम शांति।